बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अली बासरीज़ी, प्रोग्राम अंदाज़े जहां लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कियानी का बयान, अजहर खान केस का फैसला और फौज और अदालत के दरमियान जवाब और जवाबुल जवाब। इस मौजू पर गुफ्तगू होगी मोज़्ज़ज़ मेहमानों से, मगर मुख्तसर से वक्फे के बाद। जय नाज़रीन, आपने यकीनन ख़बरों में सुना होगा और उस पर बेशुमार तबसरे भी मुलाहजा किए होंगे। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस का फ़ैसला सुनाया, जिसे पाकिस्तान की तकरीबन सभी सियासी जमातों ने तारीखी फ़ैसला करार देते हुए इसका खैर मकदम किया। सिर्फ बात खैर मकदम ही तक नहीं, मुख्तलिफ जमातों ने मुख्तलिफ तरह के मुतालबात भी कर डाले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जहाँ ये मुतालबा किया कि जिन फौजी साबिक फौजी जनरलों का इस वाक़े में हाथ था, यानी रकम देकर इंतखाबात लड़ाने की जिन फौजी जनरलों ने कोशिश की थी, उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। इसी तरह से बाज़ दीगर सियासी जमातों ने यह मुतालबा किया कि जिन लोगों ने पैसे लेकर इलेक्शन लड़े या इंतखाबात में हिस्सा लिया, उन्हें भी इबरतनाक सज़ा दी जाए। और इसके बाद एक और सिलसिला जो शुरू हुआ ये कि आर्मी चीफ जनरल कियानी ने एक बयान जारी किया, उसमें ये कि किसी भी इदारे को इस बात का हक हासिल नहीं कि वो अपनी मर्जी पूरी कौम या पाकिस्तान के दीगर इदारों पर मुसलत करे। तो दूसरी तरफ एक बार फिर चीफ जस्टिस का बयान आया कि पाकिस्तान की अदलिया को सबसे ज़्यादा इस बात का अख्तियार है कि वो अपना फ़ैसला दूसरों के लिए सादिर करे। जाहिर है कि जब इस तरह के बयानात सामने आए तो इसके मुख्तलिफ माने, मुख्तलिफ मफाहिम और मुख्तलिफ मुरादें से ली गईं, और ये कहा जाने लगा कि शायद एक तरह से अब फौज और पाकिस्तान की अदलिया के दरमियान सफ बंदी और सफ आराई शुरू हो चुकी है। और जनरल कियानी के इस बयान को एक तरह से अदलिया को इंतबाह के तौर पर देखा जाने लगा, लेकिन बज़ाहिर फौज ने भी इसकी तर्दीद की है और अदलिया के हुक्काम ने भी इस तरह के बयानात को अपने लिए किसी इंतबाह से ताबीर करने से गुरेज किया है। बहरहाल बयानात दिए जा रहे हैं, उनकी तशरीह भी की जा रही है, और हसास और नाजुक दौर से गुजर रहे पाकिस्तान में इस तरह के बयानात और जवाबी बयानात को बहरहाल काफ़ी अहमियत दी जा रही है। चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, जहाँ पर बज़ाहिर पाकिस्तान के सरकर्दा और सरकर्दा तजिया निगार और पाकिस्तान की ISI के साबिक सरबरा रिटायर्ड जनरल हमीद गुल साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हमीद गुल साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
हमीद गुल साहब, जनरल कियानी के बयान को काफ़ी जहत दी जा रही है, कई पहलुओं से उनको देखा जा रहा है, क्या आप भी इस पर कोई तबसरा करना चाहेंगे?
मैं तो यहाँ अपने चैनल्स के ऊपर बहुत तबसरे कर चुका हूँ
जी
कि ये तो उनका सिर्फ वार्निंग शॉट था कि भाई आप खुदा के वास्ते फौज को तनकीद का निशाना ना बनाए। ये अमरीका का हदफ हो सकता है, ये इसराइल का हो सकता है, इंडिया का हो सकता है, पाकिस्तान के दुश्मनों का हदफ हो सकता है, लेकिन ये मुहिद्दे वतन पाकिस्तानियों का हदफ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि हर एक को अपने कानून के दायरे के अंदर रह के काम करना चाहिए। अब इसके लिए ये तशरीह निकाली जा रही है कि उन्होंने रिटायर्ड जनरल्स जिनके ट्रायल हो रहे हैं या जिनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, उनको बचाने के लिए किया गया है। जो मेरी सोच है और जो मैं जानता हूं फौज के बारे में, यकीनन ऐसा नहीं है। फौज कभी भी किसी इंडिविजुअल को बचाने के लिए नहीं आगे आती। पाकिस्तान की फौज की रवायात है, इसके बहुत पुख्ता असूल हैं और उनके तहत वो काम करेंगे, यानी वो किसी को बचाने के लिए नहीं आएंगे। अलबत्ता इदारों को बचाने के लिए, क्योंकि इदारे जो है मुल्क के तहफ्फुज़ के ज़ामिन है और पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान को जब मुख्तलिफ अंदाज से और मुख्तलिफ अतराफ से पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या ये जरूरी है कि हमारे मीडिया के लोग और हमारी जो सियासी शख्सियात हैं वो इसके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दें और इस बेहद तरह अंदाज में? सुनाची किरानी साहब ने दो बातें की कि दो सतह के ऊपर हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। पहली बात तो ये कि आप कौम और हमारे दरमियान यानी फौज के दरमियान फासले पैदा करने की कोशिश ना करें, और दूसरी बात यह है कि बिलखसूस पाकिस्तानी फौज की क्यादत और नीचे जो उनके फॉलोअर्स हैं जिनको रैंक और फाइल कहा जाता है उनके दरमियान खलीज बनाने की जो कोशिश होगी वो तखरीब कारी के मुतरादिफ होगी। उसको सीडिशन कहते हैं यानी बगावत पे उकसाना। सब सब कहेंगे कि सिपाहियों को कुछ नहीं मिल रहा और अफसर बड़े मजे कर रहे हैं और अफसर ये कर रहे हैं। यकीन करें कि मैं ऐसी कॉलोनी में रहता हूँ जहाँ बहुत ही सीनियर अफसर रहते हैं और हर कोई एक मामूली मिडिल क्लास जिंदगी गुजारता है बिशमूल मेरे। अब मुझे बताएं कि ये क्या कहाँ का इंसाफ है? क्या आप एक जनरल का, दो या दस जनरल्स का के वाकया और उसके बाद उसको इतना उछालें कि फौज के अफसरों और उसके जवानों के दरमियान एक खरीक पैदा हो जाए? तो ये तो एक रेसिपी है, एक फॉर्मूला है जिसके जरिए से पाकिस्तान के इदारों को तबाह करना मकसूद है और ये किसी तौर भी पाकिस्तान के हक में नहीं है।
हमीद गुल साहब, ये बात कहाँ से समझ में आई जो जनरल कियानी साहब ने कहा कि फौज और कौम के दरमियान खलीज ना पैदा की जाए? उन ये बात कहाँ से समझ में आई कि अदलिया ऐसा काम कर रही है?
नहीं, अदलिया के मुकाबले में देखे ना, ये इतफाक की बात है कि अदलिया ने जो बयान चीफ जस्टिस का आया वो उसी एक घंटे के अंदर आ गया। दोनों में कोई आपस में रबत नहीं था, लेकिन बात वो भी कह रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब ने भी गलत बात नहीं की। मरकजी नुकता ये है कि आज का दिफा जो है वो कौमों के ऊपर कायम होता है, वो महज तोप और टैंक और तैयारों के जरिए से नहीं मुमकिन नहीं है। और हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल अफगानिस्तान की है, तीन सुपर पावरों की नाक रगड़ दी उन्होंने, लेकिन क्या उनके पास तोप और टैंक थे या सिर्फ जज्बे था? ये कौम उठ के खड़ी होगी, जब कौमें उठ के खड़ी हो जाती हैं मदाफियत के लिए तो फिर उनको कोई शिकस्त नहीं दी जा सकती। तो ये बात चीफ जस्टिस साहब ने भी कही, मरकजी नुकता उनका यही था कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, हर इदारे को अपने एक दायरे कार के अंदर रह के काम करना चाहिए और ये कि कौमी दिफा जो है वो कौमों की हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं है।
जी जनरल हमीद गुल साहब, अगर इजाजत दें तो एक सवाल आपकी जात से मुतालिक है, अगर जसारत ना हो।
कीजिए।
शुक्रिया। वो ये कि कहा यह जा रहा है कि IJI बनाने में बहरहाल आप भी पेश थे और जो पैसों की तकसीम की बात थी वो IJI को ही की गई थी, तो अगर आपकी तरफ अंकुश नुमाई होती है तो आप इसका क्या जवाब देंगे?
मैं बार बार इसका गुज़श्ता 20 साल से ये तस्लीम कर रहा हूँ कि हाँ IJI मैंने बनाई थी, मैंने बार बार ये कहा है, कोई आज की बात नहीं। और मैंने कहा कि बेशक मेरा ट्रायल कर दें। उसकी वजह यह है कि मेरे सामने जो वाकयात थे उस वक्त के और जो उस वक्त एक खला था, उस वक्त बेनजीर की हुकूमत नहीं थी, कोई जमहूरी हुकूमत उस वक्त मौजूद नहीं थी, वो एक खला था। वहां पे गुलाम इसहाक खान साहब सदर थे और जनरल असलम मिर्जा बेग जो है वो उस वक्त उसके फौज के सरबराह थे और मैं DGISI था, एक मेजर जनरल था। तो मैंने कुछ लोगों को जमा किया, पैसे तकसीम करने में मेरा कोई किरदार नहीं। इस 1990 का जो इलेक्शन है जिसमें बेनजीर की हुकूमत को फारिग करके 6 नवंबर को गालिबन या 6 अगस्त को उसको फारिग करके और एक नया इलेक्शन करवाया गया, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं IJI में नहीं था, मैं कोर कमांडर था उस वक्त और मिर्जा असम बेग ये कह चुके हैं कि उसका कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ। और मैं बारहा ये बात दोहरा चुका हूँ, फिर आपकी तसल्ली के लिए एक दफा फिर कहता हूँ, पैसे तकसीम करने में मेरा कोई किरदार नहीं था। जो IJI उस वक्त बनी उस वक्त कोई हुकूमत नहीं थी और एक बैलेंस कायम करना था। अब उसके नतीजे में बेनजीर को हुकूमत नहीं दी गई, क्या उन्होंने सिंपल मेजोरिटी भी हासिल नहीं की थी उसके बावजूद, क्योंकि मेजोरिटी पार्टी बन के आई थी, क्या उनको इख्तदार नहीं सौंप दिया गया था? और क्या हमने मैंने इंतहाई वफादारी के साथ उनकी तमाम जो पॉलिसीज थी उनका साथ दिया? अगर मुझे कहीं इख्तलाफात थे तो मैंने उनके पास जाके उनको बयान कर दिए वो इख्तलाफात, लेकिन उन्होंने किया। और मैं आपकी इतला के लिए गुजारिश कर दूं कि सबसे पहले मैंने बेनजीर को खुद जाके बताया था कि IJI बनाने की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, ये मेरी एक ड्यूटी थी, कौमी ड्यूटी थी जो मैंने निभाई। अगर आपको उन्होंने कहा कि काश आप ना बनाते, लेकिन बहरहाल अब बन गई थी गीता। मैंने जब उनको वो हालात बताए तो उन्होंने इसको तस्लीम किया, और फिर उसके बाद की हुकूमतें दो आई, और उसके बाद उनकी तीसरी पीपल पार्टी की हुकूमत आई है। जब मेरा खुला ऐलान करने के बावजूद कि मेरा ट्रायल किया जाए, इन्होंने क्यों नहीं किया? इनको करना चाहिए था मेरा ट्रायल, क्यों नहीं किया इन्होंने? तो अब आके ये इन्होंने काएं काएं शुरू कर दी और अजीबो गरीब बातें करने लग गए हैं। जर्नैलों को हम सड़कों पे घसीटेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। ओ बाबा कर लो, तुमने जो करना है, तीन हुकूमतें तुम्हारी आई, तुमने क्यों 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 नहीं किया? ज़ियाउल हक़ का जो हादसा था, उनका जो हादसा क्या था, वो एक सैबोटाज का एक्सरसाइज से बाकायदा हो गया, उसके ऊपर आपने इंक्वायरी क्यों बंद करवा दी? क्योंकि वो अमेरिका ने करवाया था, सबको मालूम है, मैंने खुद इसके ऊपर आर्टिकल लिखे कि वो अमेरिका ने करवाया था, तो फिर आपने उसकी तफ्तीश क्यों नहीं की? बेनजीर को मर्डर करवा दिया अमेरिका ने, आपने अभी तक क्यों नहीं तस्लीम किया उसको?
जनरल साहब
कहते हैं कि हमें कातलों का पता है, लेकिन बोलते नहीं है।
जी जी
हमारी हुकूमत
जी जनरल साहब,
उनका मॉरल रवैया
जी जनरल साहब, इस वक्त बहरहाल आप पाकिस्तान के एक मौजूद शहरी और मुल्क के बही खां हैं, मैं आपसे एक शहरी के हिस्से से पूछना चाहूँगा कि क्या उस वक्त पैसों की तकसीम एक आईनी इकदाम था?
नहीं, वो अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, पैसों की तकसीम मेरे हाथ नहीं हुई, मैं क्यों कहूँ?
नहीं,
मैं कोई पैसा था, मेरे पास पैसे थे ना, मैंने तकसीम किए हैं।
मैं एक शहरी के हिस्से से आपसे पूछ रहा हूँ,
फंड से मेरे पास पैसे तो कोई आए नहीं, जो आईएसआई के फंड थे उस पर बेनजीर की हुकूमत ने, जो मेरे बाद डीजी आईएसआई आए थे उनको हुक्म मिला कि आप तफ्तीश करें, उन्होंने पूरी छानबीन की, और फिर सीआईए से पूछा गया जो हमसे कोऑपरेट कर रही थी कि क्या आपके इल्म में है कि कोई जहां खुर्द बुर्द हुई है, तो उन्होंने फिर लिख के दिया कि हम हमीदपुर के बारे में ये कह सकते हैं कि ना उसने एक बुलेट और ना एक डॉलर इधर उधर किया है।
जी,
तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा सर्टिफिकेट था। फिर उसके बाद क्या करनी थी इन्होंने तफ्तीश, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी और के जो है उनके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा, मेरा उसके साथ क्या मतलब।
जी आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा हमीदपुर साहब, वो ये कि अभी आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि फौज किसी इंडिविजुअल को बचाने के लिए आगे नहीं आती, तो क्या ये समझा जाए जैसा कि मुतालबा हो रहा है कि जो लोग मुलव्वज़ थे उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है?
कोर्ट मार्शल तो एक टेक्निकल पॉइंट है कि क्या उनको दोबारा वर्दी पहना के, जब सिविल हुकूमत मौजूद है, लॉज मौजूद है, इस वक्त एक बड़ी आजाद जुडिशरी और बहुत ही जरूरत से ज्यादा आजाद जुडिशरी आ चुकी है, एक्टिविज्म जुडिशियल एक्टिविज्म भी है, तो फिर वो क्यों नहीं ट्रायल करते? आखिर ये अगर ये आईन से इनहराफ हुआ है तो क्या ये फौजी को वापस भेजेंगे उनके पास के वो अपने पुराने चीफ को ट्राई करें? लेकिन उसके अंदर अभी हाल ही में आज मैं पढ़ रहा था कि फौज ने कहा है कि हमारे पास कोई इसका लीगल जवाब नहीं बनता, इसलिए ग्राउंड नहीं बनती, क्योंकि वो सिविलियन हो गए हुए हैं और अब वो जाने और उनका काम, जो तीन जर्नैल उन्होंने वापस बुलवाए हैं इसलिए कि उन्होंने जो फौजी इदारा था, एक एनएलसी जो है नीम फौजी इदारा है, उसके फंड में गड़बड़ हुई थी और उसकी वजह से उनको बुलाया गया, लिहाजा वो फौज का एक जुमरे में आता है, उनके दायरेकार में आता है, लेकिन ये जो मामलात हैं ये फौज के दायरेकार में नहीं आते।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त हमें इनायत किया, नवाजिश आपकी, शुक्रिया आपका। नाजिम, आप चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान के सरकर्दा और सीनियर सहाफी गुलाम अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम।
गुलाम अकबर साहब, निस्बतन तफसीली गुफ्तगु आपने मुलाहजा फरमाई होगी हमीद गुल साहब की। बाज हलकों की तरफ से ये मुतालबा हो रहा है कि जो लोग मुलव्वज़ थे असगर खान केस मामले में उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। हमीद गुल साहब कह रहे हैं कि लीगल एतबार से, कानूनी एतबार से ऐसा नहीं हो सकता, तो जो लोग मुतालबा कर रहे हैं क्या उनको इसका इल्म नहीं है?
देखें जी, इसमें मेरी जो राय है वो थोड़ी सी प्रेजुडिस्ड भी है, बायस्ड भी है, और मैं कहूँगा कि ये जिस वाक्य की तरफ इशारा है 1990 के इलेक्शंस, उसमें मैं पीडीए विच मीन्स पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस, जो जिसमें मोतमा बेनजीर भुट्टो और असगर खां लाइज थे, इनके साथ दो और पार्टियां थी, अलामा साजिद नकवी की फिक्र जाफरिया की जो पार्टी है और इसके अलावा कासम ग्रुप मुस्लिम लीग का, तो ये एक अलायंस बनी थी। ये 1990 की बात कर रहा हूँ जिसके साथ ये केस जोड़ा जा रहा है। उसमें मैं खुद एज ए प्रोफेशनल एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के सरबराह के तौर पर मैं इस अलायंस का कैंपेन मैनेजर था, मैं आपको ये इसलिए बताऊं कि मैं तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हूं। इनफैक्ट ये सारा केस जो है जो बिल्ड हुआ है, हाउ एन इलेक्शन वाज स्टोलन, एक वाइट पेपर मैंने ही तैयार किया था मोहतरमा और असगर खां के ईमा पे, और वो जो था ना वो आया था उसमें सब कुछ बताया गया था कि ये इलेक्शन कैसे चुराया गया, ये इलेक्शन चुराया गया था, इसमें तो कोई शक कुछ भी कोई गुंजाइश है नहीं। लेकिन अब हाइंड साइड में 20 साल बाद 22 साल बाद इसको ये टाइम गुजर चुका है इतना, तो हमें ये फैसला करना, अव्वल तो अगर ये उस वक्त हुआ था उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 1993 में इलेक्शन के में फतह जो हुई थी उसके नतीजे में उनकी हुकूमत कायम हुई थी, अगर उन्हें कोई शिकायत थी पार्टी को उस वक्त, ठीक है असगर खां पीडीए से निकल चुके थे, उस वक्त किसी भी पीपल्स पार्टी की क्यादत ने इस इशू को नहीं उठाया, और ये इशू जो है ये बिल्कुल समझिए कोल्ड स्टोरेज में चला गया। 1996 में जाके असगर खां के जरिए उन्होंने ये पिटीशन दायर की और वो चलती चलती यहाँ तक पहुँची कि आज जबकि पाकिस्तान बिल्कुल एक मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना कर रहा है, वो जो पूरा वाकया है उसका घोस्ट जो है ना इस वक्त हमारी सियासत पे असरअंदाज हो रहा है। अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि मेरा बायस क्लियर हो गया, मैं उस वक्त पीडीए में था, मैं एयर मार्शल असगर खां के साथ मेरी तकरीबन पूरी लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन रही है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, उनके साथ काम भी किया है, जनरल हमीद गुल जो अभी कह रहे थे ये भी मेरे दोस्त हैं, और इन्होंने जो बातें कही हैं ये मुझसे वो बारहा कह चुके हैं, और इनका ये एतराफ़ कि इन्होंने आईजीआई बनाई थी ये बताते खुद उनकी हक गोई और उनकी सदाकत का सबूत है। आईजीआई यकीनन बनाई गई थी और उसमें यकीनी तौर पे हमीद गुल साहब की जाती कोशिश और उसमें चूंकि इदारे के उस वक्त साथ मुंसलिक थे उसकी कोशिश थी, लेकिन ये वाक़ 1990 से पहले 88 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, 88 के इलेक्शंस में अब हमें ये सोचना चाहिए जब हम इस किस्से को लेकर चलेंगे तो ये इकदाम क्यों किया, आखिर क्या वजूहत बनी कि 88 में इन्होंने आईजीआई बनाई। उस वक्त एक तासर था कि पीपल्स पार्टी पे बहुत कम लोग, क्योंकि पीस पार्टी जो जलावतनी में जो रही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थे वो मुल्क से चली गई जनरल ज़ियाउल्लाह के दौर में, फिर जनरल ज़ियाउल्लाह को फांसी दी, ने फांसी दी भुट्टो साहब को, और ये उन पर इतना बड़ा दाग है कि लोगों का ख्याल था अगर पीपल्स पार्टी वापस आई तो वो विच हंट होगी और उसके बड़े बुरे असरात होंगे। और फिर एक बात याद रखने की है कि ये वो पीरियड था जब अफगान जिहाद जो है ना तकरीबन उस वक्त आखिरी मराहिल में था, लेकिन पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो अपने आखिरी मतलब ये फैसलाकुन मराहिल में दाखिल हो चुका था। बाज़ इतलात के मुताबिक और इसके सब शवाहिद भी मौजूद हैं कि उस वक्त पाकिस्तान अमली तौर पर फैक्चुअली जो था ना टेस्ट तो बहुत बाद में हुआ लेकिन उस वक्त एटमी ताकत बन चुका था। अब हम सब जानते हैं कि अमेरिका की और वेस्ट की शुरू से ही पॉलिसी रही है कि वो किसी मुस्लिम मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देंगे। आज जो ईरान के साथ उनका रवैया, हालांकि ईरान ने कभी भी डिक्लेयर नहीं किया और उसका कोई इरादा सामने आया है कि वो एटम न्यूक्लियर पावर को वो फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का या उसके लिए कोई हथियार बनाने का इरादा रखते हैं, लेकिन ईरान के पीछे अमेरिका, उस वक्त पाकिस्तान के साथ भी, लेकिन चूंकि अलाइज थे पाकिस्तान और अमेरिका अफगान जिहाद में, इसलिए वो मामला खामोश रहा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आईएसआई में फौज में एक ही एहसास मौजूद था कि अगर पीपल्स पार्टी आ गई और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के साथ आई और उनकी सरपरस्ती में आई तो अगर इतनी अक्सरियत से आई तो कहीं ऐसा ना हो कि वो न्यूक्लियर रोल बैक जो है ना वो पॉलिसी इख्तियार करे। ये असल खतरा था, ये बात कोई खुल के नहीं कहता लेकिन मुझे इस बात का पूरा एहसास है, इसलिए आमतौर पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो
बहुत शुक्रिया,
उनके लिंक्स जो
अकबर साहब मैं फिर हाजिर हूँ आपके खिदमत में,
डेमोक्रेट्स के साथ थे गालब्रेथ,
मैं फिर हाजिर हूँ आपके खिदमत में, इजाजत है मुझे, चलते हैं लंदन स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं आलमी उमूर के माहिर प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम।
मोहम्मद आरिफ साहब, मुझे नहीं मालूम कि आपने हमारे दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी या नहीं, बहरहाल मेरा सवाल आपसे ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया तकरीबन 8 जनरलों के खिलाफ, उसके बाद जो जनरल कियानी का बयान आया और जिसे एक इंतबाह के तौर पर देखा जा रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि अदालत किसी हद तक पसपाई अख्तियार करेगी?
देखिए, इस मसले को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप समझें कि पिछले 65 साल में जो अदालतें हैं उनका रवैया जो है वो आज़ादा नहीं था, बल्कि हर फौज के एक्ट को, एक्शन को वो सपोर्ट करते रहे। नजरिए ज़रूरत उन्होंने इंट्रोड्यूस की, जिसके ज़रिए उन्होंने तमाम डिक्टेटर्स को जो फौज के थे उनको सपोर्ट की। अभी आपके जनरल साहब बैठे हुए थे, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ISI मैंने बनाई। भाई, ISI जो थी वो CIA की ज़ैली जमात थी, और उसने जो हरकतें की हैं मुल्क के अंदर उसके असरात आज नमदार हो रहे हैं लोग मुल्क के ऊपर। मुल्क जो तबाह हो रहा है वो ऐसे ही लोगों की वजूहत हरकत से हुआ है, जैसे ही ये अपने जनरल साहब थे जो है। तो मसला आज ये है कि, और ये फौज की ताकत जो पाकिस्तान में है वो 1954 में जब जनरल अयूब खां उसके कमांडर इन चीफ और डिफेंस मिनिस्टर बने, तो उन्होंने फौज की ताकत बहुत बढ़ा दी। उसके बाद फौज के ने पूरा कंट्रोल मुल्क में ले लिया, अदालतें जो थीं वो आज़ाद नहीं रहीं, और उन्होंने तमाम जितने फैसले थे वो फौज के फेवर में किए। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं, आज अवाम भी जग चुके हैं, मिडल ईस्ट में इंकलाब आ चुके हैं, सारे लोग खड़े हो रहे हैं, अपने हकूक मांग रहे हैं, अपनी डिग्निटी मांग रहे हैं, और इस सिलसिले में फौज जो वो हरकतें कर रही थी अब वो नहीं कर सकती। अब ये जो फौज एक पाकिस्तान में आज जो बड़ी चीज़ें, दो जो बड़ी चीज़ें हुई हैं वो ये है, एक तो अदलिया आज़ाद हो गई है, और दूसरी यह है कि वहाँ की जो ज़राए अबलाग है, जो मीडिया है, वो आज़ाद हो गई है। लोग आप खुल करके आज बातें कर रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर कि फौज का किरदार क्या रहा है इस मुल्क के अंदर जो है। तो आज जो ये हुआ है वो ये जाहिर अक्कासी करता है कि अब फौज की वो जो थ्रेट थी, वो हरकतें थी कि साहब हम टैंकों के साथ और इनके साथ जो है वो उनके ऊपर हुकूमत करेंगे, अब लोग इसको मानने पर तैयार नहीं है। और ये किस्सा जो है जिसमें असलम बेग को, जनरल असलम बेग को कमांडर इन चीफ को और जनरल दुर्रानी को मुलजिम ठहराया गया है, वो ये लोग तो वो हैं जिन्होंने अवाम के हकूक और अवाम की जमहूरियत को पामाल करने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने पैसे बांटे, उन्होंने इलेक्शन को गड़बड़ करवाने की कोशिश की, उन्होंने हर सब कुछ वो किया जो किया। अब दो साल से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट केसेस को सुन रही है कि जो सैकड़ों लोग बलूचिस्तान से, आपके पख्तूनख्वा से और फाटा से गायब हो गए हैं, उनका कोई पता नहीं है। अब अदालत जो है वो उनके केसेस को सुन रही है और फौज से कहती है वो कहाँ हैं वो लोग जो है। होता यह था कि पुलिस लोगों को पकड़ लेती थी और उसके बाद ISI के हवाले कर देती थी, उसके बाद वो लोग गायब कर दिए जाते थे।
बहुत शुक्रिया आपका। गुलाम अकबर साहब, अभी जैसा कि आपने गुफ्तगू मुलाहजा फरमाई हमीद गुल साहब की, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो क्या फौज को सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की ऑन ड्यूटी अफसरान को इजाज़त है आइन के मुताबिक, और अगर इजाज़त नहीं है तो क्यों उन्होंने ऐसा किया, और अब जब ये बात सामने आ गई है तो क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है?
ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब बड़ा तल्ख है। ये फैसला जनाब जुल्फकार अली भुट्टो को करना चाहिए था 1971 में 20 दिसंबर को, जब उन्होंने पाकिस्तान में इकदार संभाला था कि फौज को पाकिस्तान में कोई अमल दखल होना चाहिए या नहीं। लेकिन उन्होंने हल्फ उठाया चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर। देखिए, ये बड़ी तल्ख बातें हैं, लोग फलासफाइज तो करते हैं हकायक को, लेकिन यहाँ हुक्मरानी जो है शुरू से ही, जब से पाकिस्तान बना है, ये साजिशों का शिकार रहा है। कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इसे कोई लीडर नहीं मिल सका, बिहाइंड द सीन्स इकतदार की बंदर बांट होती रही है। उसके बाद 1958 का मार्शल लॉ आता है, उसमें फौज हुकूमत करती है, फिर वो, यानी मैं इस, ये बड़ी लंबी तारीख है, इसमें जाना नहीं मैं चाहता, लेकिन एक मौका आता है जब हमारा कायदे अवाम जो हमारा लीडर था, जिनका मैं बहुत बड़ा फॉलोअर रह चुका हूँ, और उस वक्त उसके हाथ में जब इकतदार आता है 20 दिसंबर 1971 में, उस वक्त फौज जो है वो डिसक्रेडिट हो चुकी है, उसने आधा मुल्क गंवा दिया है, मतलब लोगों का परसेप्शन ये था। तो उस वक्त उन्होंने चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर इख्तदार क्यों संभाला, और फिर वो अख्तियारात जिस तरह जनरल अयूब खान ने किए थे, जिस तरह बाद में ज़ियाउल्लाह ने किए, जिस तरह बाद में परवेज मुशर्रफ करता रहा, उसी अंदाज में उन्होंने अख्तियारात इस्तेमाल करके पाकिस्तान के तमाम इदारों का, आप मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि भाई बहरहाल उनका उनकी एक सोच थी, उन्होंने कोई जमहूरी तरीका अख्तियार नहीं किया, उनका दौर ऐसा था कि अगर उन्होंने आइन भी दिया तो वो भी एक चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर दिया, वरना उसूली तौर पर उन्हें ये करना चाहिए था कि वो बाद में ये आज जो है ना ये बात सुननी चाहिए, क्योंकि हम बातें तो बहुत करते हैं कि अदलिया आज़ाद है और फौज जो है वो जब भी आती है तोपों टैंपों के आप काबज़ हो जाती है, लेकिन ये बात ऐसी कभी भी नहीं रही पाकिस्तान में। ये बदकिस्मती कह लीजिए कि जब भी फौज आई है उसका इस्तकबाल हुआ है, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी हैं अवाम ने, इस बात को अब ये मुल्क जो है ना अवाम से बना है ना, ये चंद इंटेलेक्चुअल्स का मुल्क नहीं है, पाकिस्तान के अवाम जो है वो इसमें रह रहे हैं और वो करोड़ों की तादाद में है। अगर वो जब भी यानी ये कितना बड़ा अलमिया है कि 1999 में उस वक्त तो ऐसे हालात नहीं थे, उस वक्त जब मार्शल ला लगाया परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त भी मिठाइयाँ बांटी गई, तो 1971 में हमारे साथ ये पहला जुल्म हुआ था, उस वक्त चाहिए था कि भुट्टो साहब जब मुल्क टूट गया उस वक्त 3 माह के अंदर नए इलेक्शन कराते और नए इलेक्शन करा के पार्लियामेंट आती है और वो उसके वजीर आज़म बन के फिर आइन बनवाते, उन्होंने एक ऐसी पार्लियामेंट को अपना हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जो इसका कोई वजूद ही नहीं था, क्योंकि मुल्क टूटने के बाद 1970 के इलेक्शन जो थे नल एंड वॉइड हो चुके थे, जब मुल्क ही टूट गया तो उन इलेक्शन की बुनियाद पर जो उन्होंने बाकी लूले लंगड़े लोग जो बचे उनको उन्होंने 2 साल के अंदर फिर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उन्होंने वो आइन दिया पाकिस्तान को। मैं इसमें तफसील में नहीं जानता, आज के मैं हालात पर आ रहा हूँ, चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, उनकी उनका जो फैसला है वो ये है कि आइन के वो मुहाफिज हैं, आइन की तशरीह करने का अख्तियार जो सुप्रीम कोर्ट पे है और किसी भी इदारे को आइन से बाहर कोई काम करने नहीं दिया जाएगा। मेरे ख्याल में फौज ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे आप आइन से बाहर कह दें। फौज ये जो बयान आया था ये बदकिस्मती से हमारे मीडिया में फौज का ट्रायल शुरू हो गया था। आप वो कहते हैं कि आज़ाद मीडिया, आज़ाद मीडिया हमारे पास नहीं है, हमारे पास फंडेड मीडिया है और ये फंडिंग जो है ना अमेरिका कर रहा है, इसमें हमारे दुश्मन हमारे मीडिया को फंडिंग कर रहे हैं और वो पाकिस्तान की जड़ें उखाड़ने के लिए। देखिए ये आज़ादी जो है ना, आप चाइना में क्यों नहीं है आज़ाद मीडिया और ऐसे ममालिक में जो तरक्की कर रहे हैं वहाँ क्यों नहीं है इतना आज़ाद मीडिया? हमें बदकिस्मती से हमारा मीडिया जो है उसके जो ओनर्स हैं उन सब की जड़ें जो हैं बाहर हैं, जितने हमारे सियासतदानों की जड़ें बाहर हैं। सिर्फ हमारा मुल्क करप्शन अगर यानी जो अगर कानून तोड़े गए हैं तो उसमें हमारे सियासतदान भी उसी तरह शामिल हैं। अभी मैं मिसाल देता हूँ, हमने जनरल असलम बेग की बात कर ली, ठीक है उन्होंने पैसे बांटे 14 करोड़ पे टोटल, जिसमें 7 करोड़ बांटे गए, 7 करोड़ कहा जाता है कि ISI के फंड में जमा करा दिए गए। अब मैं नहीं समझता कि वो इलेक्शन सिर्फ 7 करोड़ से जीता गया था, उसमें बहुत पैसा खर्च हुआ था। ये तो वो फिगर्स हैं जो सामने आई हैं और वो एक शख्स जो है ना जिसका नाम हबीब यूनुस हबीब है और ये यानी यूनुस हबीब वो आदमी है जिसने पाकिस्तान के हर पॉलिटिशियन करप्ट किया है, उसने पीपल्स पार्टी को ज़्यादा पैसे बाद में दिए, यानी जब 1993 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कायम हुई है। तो ये कहानी बड़ी लंबी है मेरे ख्याल में, अब हमें चाहिए कि एक नई बिगनिंग शुरू करें। जस्टिस के इफ्तिखार जो है ना वो
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका औलाद अकबर साहब। आरिफ साहब आप देखें कि बात जब ये आ रही है कि पैसे बांटे गए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो एक पाकिस्तान में बड़ा हल्का ये भी है कि जो मुतालबा कर रहा है कि जिन लोगों को पैसे दिए गए और जिन लोगों ने पैसे लेके इलेक्शन लड़े उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्या समझते हैं कि अदालत इस सिलसिले में भी कोई कार्रवाई करेगी? और जिन लोगों ने पैसे लेके इलेक्शन लड़े हैं उन्होंने भी तो अदालत के इस फैसले का खैर मकदम किया, तो ये कैसे मुमकिन है?
देखिए जिन लोगों ने पैसे लिए वो भी उसी तरह उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है जैसे दूसरों के ऊपर, लेकिन उन्होंने वेलकम इसलिए किया है कि अब वो देख रहे हैं कि जुडिशरी जो है आज आज़ाद हो गई है और अवाम जो है पाकिस्तान के वो अब जुडिशरी के साथ हैं, ना वो फौज के साथ हैं ना उन लोगों के साथ हैं जो फौज को आज सराह रहे हैं और उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। आज अवाम जो है वो चीफ जस्टिस के साथ हैं। इनफैक्ट इस मसले के ऊपर तमाम जितने अभी रिव्यूज़ आए हैं, जितने बार एसोसिएशन हैं, उन अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था पेशावर बार एसोसिएशन का, उन लोगों ने फैसला किया कि हम पूरी तरह से चीफ जस्टिस का साथ देंगे जो है। यही हो रहा है सारे मुल्क के अंदर। अब फौज अपने को रीअसर्ट करने की कोशिश कर रही है, ये कर रही है, फिर उसी पर आ जाए कि वो अकाउंटेबल भी ना हो, किसी के जवाबदेह भी ना हो और साफ शफाफ भी ना हो और जो चाहे मनमानी करती रहे। अब वो नहीं हो सकता क्योंकि अब कानून जो है, दस्तूर जो है, उसकी उसका इंटरप्रिटेशन, उसका जो तशरीह है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी और सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम रहेगी जो है। और इस सिलसिले में अब दूसरे पुराने मामलों को उखाड़ना जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आप ट्रुथ पे नहीं जाएंगे, आप फ्यूचर अपना जो है वो माजी को आप जब तक नहीं समझेंगे, आप फ्यूचर नहीं अपना मुतय्यन कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि तमाम वो मामलात जो कि पहले गलतियां हुई हैं या साजिशें हुई हैं और जो गबन वगैरह हुए हैं, उन तमाम को सामने लाया जाए। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है और मैं पूरी तरह अग्री करता हूं तुमसे, आपसे, कि जो लोग जिन्होंने पैसे लिए हैं वो भी उसी तरह जिम्मेदार हैं जैसे कि देने वाले हैं। लेकिन फौज का एक सिपाही, एक जनरल, एक कमांडर इन चीफ और आईएसआई का चीफ, ये मिलकर के मुल्क की जमहूरियत और मुल्क के इलेक्शन को सबवर्त कराए, ये जो है ये मेरा ख्याल बहुत बड़ा जुर्म है। ये तो गद्दारी है, टोटल गद्दारी है और इस सिलसिले में इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, इन लोगों के ऊपर जो है। और मैं तो फिर कहूँगा कि ये लोग जो थे पहले, इनसे पहले जो आए हैं, जिन्होंने आईएसआई बनाई और जिन्होंने अफगानिस्तान में हैवक क्रिएट किया और जिस तरह उन्होंने आवाम को परेशान किया यहाँ भी, और जो पाकिस्तान की आज हालत है और जो अफगानिस्तान की आज हालत है, ये उसमें उनका बहुत बड़ा किरदार है। तो इसलिए इन लोगों को सजा तो मिलना चाहिए मेरे ख्याल में, और जब तक आप इन लोगों को सजा नहीं देंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते।
बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर साहब। ये जो फैसला इस मौके पर आया है 17-18 साल की समाअत के बाद, आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन करीब है, इस पस मंजर में ये फैसला दिया गया है? और एक ऐसे वक्त जब पाकिस्तान, जबकि अदलिया, फौज और हुकाम सभी कह रहे हैं कि इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो ऐसे मरहले पर यह फैसला आना मुल्क के हालात के तनाजुर में कितना मुनासिब है आपके ख्याल में?
देखिए, इससे पहले इस केस से, इसके फैसले आने से पहले एक तासर बिल्ड हो रहा था और ये हमारी हुकूमत कर रही थी, हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उनके जो इत्तेहादी थे, कि ये अदलिया जो है ये नवाज शरीफ के साथ मिली हुई है, उसका कोई केस उठाना नहीं चाहती। आपको ये इस बात का ये अफवाहें भी चलती थी और तबसरे भी हो रहे थे, तो अदलिया के लिए ये बात नागुजीर हो गई थी कि ये फैसला दे, ताकि वो उसका जो ये तासर अदलिया के बारे में ये पैदा हुआ था वो गलत साबित हो। अब इसमें देखें कि बुनियादी तौर पे दोनों जो मुलजिम हैं, जनरल मिर्ज़ा असलम बेग और असद दुरानी, उन्होंने एक लिहाज से ये एतराफ़ कर लिया है कि पैसा इसी तरह से हुआ है। अब जनरल मिर्ज़ा असलम बेग का जो डिफेंस है वो ये है कि उन्होंने लाफुल कमांड जो थी उस वक्त, वो गुलाम शाह खान थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके हुक्म की तामील की थी और उसमें लाफुल कमांड में एक वजन है, लेकिन बहरा वो चूँकि डिफेक्टो पोजीशन ये नहीं होगी और यकीन तौर पर मिर्ज़ा असलम बेग का इसमें उस वक्त हाथ होगा, ये एक अलग बहस है। लेकिन अब इससे एक बात तो खुल के सामने आ गई है कि हमारी IJI जिसके प्रिंसिपल बेनिफिशरी मियाँ नवाज शरीफ यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, वो जो अपना इमेज और इस वक्त तासर बिल्ड कर रही थी कि वो बिल्कुल नहाई धोई है, उसका कभी फौज से कोई तल्लक नहीं रहा, ये बिल्कुल गलत साबित हो गया है। ये फौज का प्रोडक्ट था, पहले ज़ियाउल हक ने उसे पैदा किया, उसके बाद उसको सपोर्ट ISI से मिली, IJI में इसको जितवाने के लिए इलेक्शन फंडिंग दी गई, सारी बातें आ गई हैं। अब वो माने या न माने ये तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे भाई ने जो अभी कहा है इसका इलाज एक ही है कि इलेक्शन का प्रोसेस जारी रहे और इसके अलावा एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए जो एक बड़ी बड़ी शख्सियात और गैर जानबदार शख्सियात पर हो, जिसमें सब लोग आके अपने अपने गलतियों का, अपने अपने जराइम का एतराफ़ कर लें, कौम उन्हें माफ़ कर देगी। उसमें मियां नवाज शरीफ भी डेफिनेटली मौजूद होंगे, पीपल्स पार्टी ने भी किए हैं। देखिए 1993 में जो नवाज शरीफ की हुकूमत हटाई गई थी वो किसने हटाई थी? वो पीपल्स पार्टी और फौज के गठजोड़ के लिए हटाई गई थी। आप देखिए मंजूर भट्टो ने पंजाब की असेंबली पूरी की पूरी हाईजैक कर ली, वो कैसे की थी? वो खुद बखुद तो नहीं हुई थी, उसके पीछे भी डेफिनेटली फौज थी। ये बातें, ये सच बड़ा तल्ख है, उसको महदूद नहीं करना चाहिए दो जातों पर कि आप दो फौजियों को टारगेट करें। हमें इज्तमाही तौर पर अपने गुनाहों और अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए, और यहाँ इस हमाम में तकरीबन सभी नंगे हैं, इसलिए ये कहना कि हमारे डिग्रीज का फ़र्क हो सकता है, किसी ने कम जुर्म किया है, किसी ने ज़्यादा जुर्म किया है, इक्तदार की जंग ने में सब ने बड़े भयानक जराइम किए हैं।
जी गुलाम अकबर साहब, अगला सवाल भी आप ही से करना चाहूँगा कि एक तो पैसा बांटने वाले का जुर्म है अगर है, और दूसरे पैसा लेकर इलेक्शन लड़ने वाले का जुर्म है, तो जिसने पैसा लेकर इलेक्शन लड़ा है उसके खिलाफ भी क्या कोई अदालती फैसला आया है कि इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं ऐसे अफराद या नहीं ले सकते,
ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए ना, उन्होंने बाल हुकूमत की कोर्ट में फेंक दिया है, और उसमें उन्होंने ये स्टैंड लिया है कि हुकूमत ट्रायल करे। अब हुकूमत कभी ट्रायल नहीं करेगी, मैं उसकी वजह बताऊं कि हुकूमत खुद जो है वो बेनिफिशरी है इस पैसे की, यही मरकजी किरदार उसका बहरहाल यूनुस हबीब और मेहरान बैंक है, वहाँ से पैसा आया है, और उसने वो बाद में अलाई बन गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जैसे असद दुरानी जो है उस वक्त उन्होंने पैसा तकसीम किया पीपल्स पार्टी के खिलाफ, लेकिन बाद में वो पीपल्स पार्टी के तकरीबन रुकन बन गए थे। तो ये इसमें बड़े तल्ख हकायक आने हैं, इसलिए पता है, अदलिया को भी पता है कि हुकूमत जो है ना ट्रायल नहीं करेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए, जो हकायक सामने लाए, जो बताए कि हमारे सियासतदानों का क्या किरदार रहा है इसमें, उन्होंने क्या क्या हरकत की, फौज के सिर्फ नहीं, यानी एक इज्तमाही जो है ना, अगर आपने एहतसाब करना है तो अक्रॉस दी बोर्ड बिल्कुल 11 प्लीट पर सबका बराबर होना चाहिए।
बहुत शुक्रिया आपका, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान से पाकिस्तान की इंतहाई सरकर्दा सहाफियत निगार सज्जाद मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम जी।
बात यह हो रही है सज्जाद मीर साहब की, पैसा देने वाले भी मुलजिम है और पैसा लेकर इलेक्शन लड़ने वाले भी मुलजिम, तो पैसा तकसीम करने वालों के खिलाफ तो अदालत का फैसला आ गया, लेकिन क्या जो पैसा लेकर जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है वो अवाम की अदालत में महकूम होंगे?
असल में जी सवाल ये है कि पहले तो साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने पैसा लिया है। एक आदमी कहता है मैंने पैसा दिया है, दूसरा कहता है मैंने नहीं लिया। सरकारी महकमों में ये भी होता है कि पैसा देने वाले तो शो कर दिया जाता है कि हमने इतना पैसा दिया है, और उस आदमी को उससे कम पहुँचाया जाता है या पहुँचाया नहीं जाता। मसलन आपदा हुसैन ये कहती है कि ये कहते हैं 10 लाख रुपये दिए, जर्सी ली उन्होंने मुझसे, दिया 5 लाख, और वो 5 लाख मैंने जब देने गई उसका उस शख्स को जिसको बैठाना था, उन्होंने कहा इसको बैठा दें पैसे हम दे देते हैं, एक कैंडिडेट था, बैठाने गई तो एक और मेजर पहले उसे 5 लाख इस बात के दे गया था कि आपने बैठना नहीं है। तो ये जो सारे ट्रिक्स होते रहे माजी में, इसमें तो कोई भी हर समाज में तो सब नंगे हैं जी, और वो सिक्योरिटी रिस्क और रीजन की वजह से। अब आप MI का जो चीफ है उसने जो बयान दिए हैं, उस्मान कराची में था बगैर सईद अख्तर, वो तो अजीब गरीब बयान था, हामद सईद उसने तो अजीब गरीब बयान दिए हैं। उसने कहा साहब उस वक्त हमारी सिक्योरिटी रिस्क था, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम एट स्टेक था, इसने इंडियंस को हमारी रिश्तें फराहम कर दी थी, उन लोगों की जो खालिस्तान तहरीक में काम कर रहे थे, राजीव के साथ इसने कश्मीर का मतलब था उस पर कोई अंडरस्टैंडिंग कर रही थी, वो पाकिस्तान आया तो कश्मीर के बोर्ड हटा दिए गए थे। इस वक्त फौज बहुत डिस्टर्ब थी, डिस्टर्ब होने का मतलब था कि वो समझते थे कि अगर बेनजीर रह गई तो इस मुल्क का हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो वाइंड अप कर दिया जाएगा, इसने अमरीका से कोई अंडरस्टैंडिंग कर ली है। ऐसी सूरत में हमारी कोशिश थी कि हम नहीं आए, मार्शल लॉ नहीं लगाया जाए, फौज नहीं आया जाए, और ऐसे में सूरत हाल में अगर कोई खुफिया इदारे या एजेंसियां हर मुल्क में अपना अपना CIA या वो काम करती हैं, तो हमारे इदारे ने अगर कोई काम किया होगा तो यही किया होगा, वो उनका ये कहना नहीं है कि हमने ये जानती की है। अच्छा ये पैसे 35 लाख या फलाना इतने पैसे देना या 4-7 लाख करोड़ रुपया बांटना, ये उस जमाने में भी इतनी बड़ी रकम ही था कि एक इलेक्शन रिक किया जाता। लेकिन एक असूली बात है कि अगर किसी को खरीदा गया है, किसी की मदद की गई है, तो ये पैसा इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता रहा है हमारे इलेक्शन में, एक बार नहीं दो बार। IGI 88 में बनी है, ये 90 का वाक्य है, 93 में बेनजीर, अभी आ रहा है कि IB का 27 करोड़ रुपया लिया गया है नवाज शरीफ की पंजाब में हुकूमत गिराने के लिए। तो ये इदारे एजेंसियां ये सब काम करते रहे हैं, फायदा इसका ये होगा कि आइंदा से ये इदारे इस किस्म का एक्ट करने में मुहतात होंगे। खतरा इस बात का है कि अगर इस बात को ज्यादा फैलाया गया और जिस तरह कोर्ट्स भी रिमार्क्स दे रहे हैं जिनकी बहुत एहतराम है इस वक्त पाकिस्तान में, एक ही इदारा है जिसका एहतराम किया जा रहा है अदालतों का, लेकिन अगर ये ज्यादा किया गया तो कहीं फौज के अंदर आम सिपाही में रिजेंटमेंट न पैदा हो जाए, और ये शुरू पाकिस्तान के लिए खासतौर पर जब वो खतरात में गिरा हुआ है, एक तरफ इंसर्जेंसी है, हमारे फ्रंटियर इलाकों में भी, बलूचिस्तान में भी कुछ लोगों को शह दी जा रही है, उधर अफगानिस्तान में अमरीकी फौजें मौजूद हैं, नेटो की फौजें मौजूद हैं, इधर इंडिया मौजूद है, ऐसी सूरत में फौज को कोई नुकसान पहुंचने का अगर अंदेशा पैदा होगा तो उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। चुनाचे तमाम
यकीनन जो आप बात फरमा रहे हैं, इन तमाम हालात का, नजाकतों का तो अदालत को भी एहसास होगा और इल्म होगा। 17 साल के बाद ऐसी मौके पर ये फैसला क्यों आया?
जी, ऐसे मौके पर फैसला ये आया कि हम पॉलिटिकली तौर पर हर चीज अदालत के कोर्ट में डालते हैं और फिर उसको फोर्स करते हैं कि वो फैसला करे। ये एक फैसला आया ना जी। अब अगर आप चले जाएंगे ये तय करने के लिए, वो ट्रायल कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम अदारा है। आप ट्रायल कोर्ट के लिए पहले FIA को तहकीक करनी पड़ेगी, कहीं करके छोटी अदालत में ले जाना पड़ेगा मुकदमे को, मुकदमे को छोटी अदालत में ले जाने के लिए साबित करना पड़ेगा। पर कैसे साबित कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर कि नवाज शरीफ को 35 करोड़ पे दिए, जबकि जमे असद दुरानी भी नहीं कहते कि उन्होंने दिए, वो यूनुस अबीब एक साथ कह रहे हैं सिविलियन के मैंने दिए। तो क्या वो यूनुस अबीब जो थे ISI के एजेंट थे, वो किसके अध्यक्ष सिविलियन थे, बैंकर थे? अगर उन्होंने दिए तो पीपल पार्टी के
राबता मुनक़दा हो गया। आरिफ साहब चलते हैं लंदन स्टूडियो, वहाँ पर मौजूद हैं। मोहम्मद आरिफ साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हुक्म सुनाया है कि हुकूमत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, क्या हुकूमत इस पोजीशन में होगी आपके ख्याल में?
देखिए, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, वो मुकदमे नहीं चलाती है, वो सिर्फ तशरी करती है दस्तूर की। तो ट्रायल जो है वो दूसरी कोर्टों अदालतों में होता है। अच्छा, और उसको प्रोसिक्यूट करने का काम जो है वो हुकूमत पे है। अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मानती है तो सुप्रीम कोर्ट को यह हक है कि उनको कंटेम्प्ट में वो अपने सामने लाए और उनसे पूछे भाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप जो है, और उसको उनको सजा देने का हक है इस फैसले पर। तो मेरा तो ख्याल है कि अभी हुकूमत जो है, इलेक्शन अब 2-3-4 महीने रह गए हैं कुल, तो उसके लिए टोल मटोल करेगी, लेकिन आखिर में इनको करना पड़ेगा क्योंकि इस ये अब मसला जो है बहुत आगे बढ़ चुका है, आवाम को पता चल चुका है, टॉक शो हो रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, आवाम जो है वो समझ गए हैं क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, होता रहा है मुल्क में, इनफैक्ट वो सब इस बात को अब समझ गए हैं। तो ये अब आसान काम नहीं है कि हुकूमत जो है वो काम ही ना करे। अच्छा, दूसरी बात जिन्होंने सज्जाद मीर साहब ने कहा कि फौज इससे उसका मोरल कम होगा, फौज का मोरल कम नहीं होगा, कुछ जनरलों का मोरल जरूर कम होगा जिन्होंने जो अभी तक ये हरकतें करते रहे। फौज तो जो जवान है, जो आम फौजी है, वो तो बिल्कुल सच्चा है और पूरी तरह वो डिवोटेड है, मुल्क का पेट्रियट है, लेकिन ये कुछ जनरल जो हैं जो बंगलिंग करते रहे हैं और शायद अब भी कर रहे हों, उनको तो खतरा है सबसे ज़्यादा जो है। मैं तो समझता हूँ कि अब भी फौज के बहुत से जनरल जो हैं वो बहुत घबराए हुए हैं कि कहीं उनका नाम भी कल फौज सुप्रीम कोर्ट के सामने ना आ जाए जो है, इसलिए वो मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने को झंडे के अंदर लपेट लें कि साहब अगर हमारे साथ कुछ हुआ तो मुल्क को सालमियत खतरे में पड़ जाएगी। हालांकि ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई सालमियत किसी जनरल के, अभी अमेरिका में 2 जनरल निकाले गए हैं, जा रहे हैं, निकाले गए हैं अभी जो है, और रिजाइन किया उन्होंने, उससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ा उनको।
बहुत शुक्रिया आपका साहब, बहुत शुक्रिया।
हिंदुस्तान में बहुत से निकल गए।
बहुत शुक्रिया आपका। गुलाम अकबर साहब, मेरे पास 2 से 2.5 मिनट का वक्त बचा है, मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि जो जनरल कियानी का बयान आया था कि किसी भी इदारे को हक नहीं है कि वो तमाम इदारों पर अपनी मर्जी मुसलत करे या आवाम और फौज के दरमियान इख्तलाफ पैदा करे, तो क्या ये समझा जाए, जैसा कि बाज़ हल्के इसकी तशरीह कर रहे हैं, कि एक तरह से फौज और अदलिया आमने सामने आ गए?
देखिए, मैं पहले अल्फाज जो है ना एग्जैक्ट ये करेक्शन करूंगा। उन्होंने ये कहा कि हतमी फैसले कौम के बारे में करने का अख्तियार किसी एक फर्द या इदारे को नहीं है, मर्जी मुसलत करने की बात नहीं उन्होंने कही, एक बात तो ये है। अब ये हतमी फैसला जो है इसकी तशरीह होनी चाहिए, ये मैं इससे हट के बात करूँगा। ये लाजमी तौर पर चूँकि उस दिन इतफाक़ ये हुआ कि दोनों बयान इकट्ठे आ गए चीफ जस्टिस साहब ने, हालांकि चीफ जस्टिस साहब ने पहले तकरीर की थी, वो बाद में नशर हुई और वो उन्होंने बाद में की वो पहले नहीं, तो लोगों का तासर यह है कि शायद ये एक टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन क्रिएट हुई, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन एक बात है, ये फैक्ट है कि एक डिस्पेंसेशन का जब इतने बड़े पैमाने पे, ये दो ही इदारे हैं जिन पे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इन्हिसार है, वो तो हमारे आरिफ साहब कह रहे हैं ना कि वो सिर्फ अदलिया जो है ना वो तो फैसले कर सकती है, वो तो अपने 4 साल से अपने किसी फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा सकी। जब तक के मुल्क की इंतज़ामिया जो है या दूसरे इदारे जो मुल्क चलाते हैं, जो भी इदारे हैं, वो जब तक कि अदलिया के साथ खड़े नहीं होंगे उस वक्त अदलिया जो है सिर्फ फैसले सुनाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। ये एक हमारी बदकिस्मती है, लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो जो कियानी साहब ने ये फरमाया था वो यही था कि हमें बहुत बड़े बड़े फैसले, अब देखें इस वक्त बयक वक्त एक मीडिया प्रोग्राम चला जिसमें कि ये 9 जर्नैल जो है ना उनका ट्रायल शुरू हो गया है, अब जर्नैलों की के एहतसाब का मौसम आ गया है। और हमारे भाई आरफ साहब भी यही कह रहे थे कि इनका देखिए इस वक्त मुल्क पाकिस्तान जो है ना हालत जंग में है। ये कहते हैं फौज अलग चीज़ है, जनरल अलग चीज़ है, जनरल हमेशा ही फौज की कमांड हमेशा।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है नाज़रीन, आपने हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। हमारे पास वक्त नहीं है कि नतीजा बहरहाल आपके हवाले करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली अब्बासी जी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।